मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 17 दिसंबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में हमेशा की तरह मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि एकेडमी साल में दो बार 15-15 दिन की क्लासेस लगाती हैं। उनके लिए जिस जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो फरवरी 2016 में होने जा रहा है और उसके लिए स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। चार स्टूडेंट्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं। मैं इन अपने चारों दोस्तों का विशेष रूप से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दोस्तों के नाम हैं राजीव दुबे जो दिल्ली से हैं, राजीव अरोड़ा आप लुधियाना से हैं, सतीश कुमार चौधरी आप सीकर राजस्थान से हैं और मीनू पांडे जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। राजीव दुबे, राजीव अरोड़ा, सतीश और मीनू आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा आज 17 दिसंबर है और डेफिनेटली कल 18 दिसंबर होगा। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कल का दिन एक विशेष दिन है, उनके लिए भी जिन्होंने इस साल का प्री क्वालिफाई किया है, और सच पूछिए तो उनके लिए भी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनके लिए भी जो प्री में ही नहीं बैठे थे, यानी कि हर उस स्टूडेंट के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं फ्रेंड्स कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वह इस मायने में महत्वपूर्ण है कि कल से मेंस के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से भी सभी उन अपने नौजवान साथियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जो कल के एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एक तरीके से जो सिविल सर्विस परीक्षा का जो युद्ध होगा, कह लीजिए सो कॉल्ड युद्ध, जिसके लिए हथियार है आपके फाउंटेन पेन, उसमें भाग लेंगे। मित्रों और निश्चित रूप से मैं उन सबके प्रति न केवल शुभकामनाएं ही प्रेषित कर रहा हूं बल्कि ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूं कि हे ईश्वर उन सभी स्टूडेंट्स को शक्ति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे, मानसिक ताकत प्रदान करे ताकि वे ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा वो वहां करके आ सके। और मित्रों मुझे याद आ रहा है कि इस बार जो हमारे अक्टूबर नवंबर का जो बैच था उसमें लगभग 15 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अभी मेंस में अपीयर होंगे। कल उनकी एक तरीके से परीक्षा होगी और जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड बैच भी रहा है उसके भी बहुत से स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उन सभी स्टूडेंट्स के प्रति और भी विशेष रूप से हम सबकी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी। एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा उन सभी साथियों से जो कल की परीक्षा में बैठेंगे। फ्रेंड्स आप कभी भी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिशन पर आधारित है इस रूप में मत लीजिए कि पेपर कैसा आया है। अगर पेपर सरल आया है तो वो सबके लिए सरल है और अगर पेपर कठिन आता है तो वह भी सबके लिए कठिन है, क्योंकि वहां का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो सिलेक्शन की प्रक्रिया है। अगर पेपर कठिन आ रहा है तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो नीचे चले जाएंगे और पेपर सरल आया है तो कट ऑफ मार्क्स ऊपर चले जाएंगे। इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर सरल है या कठिन है। हां तब जरूर फर्क पड़ जाएगा यदि दूसरों के लिए सरल है लेकिन मेरी तैयारी कुछ इस तरीके की है कि मुझे वो कठिन लग रहा है, तब तो डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा। और यदि सामान्य तौर पर सबके लिए सरल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए कठिन है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं एक बिन मांगी सलाह के रूप में सबको यह कहना चाहूंगा कि मित्रों पेपर चाहे जैसा भी आए, परीक्षा हॉल में आपको अपना संतुलन जरा सा भी नहीं खोना है, जरा भी उसे डगमगाने नहीं देना है। अपने दिमाग पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें, अपने इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें और इत्मीनान के साथ आप केवल एक बात ध्यान में आपके रहनी चाहिए और वो ये कि स्थिति चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, बुरी हो, अच्छी हो, मुझे अपना बेहतर से बेहतर देना है। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए थी, कैसी होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया, ये क्यों नहीं पूछा गया, इन सारी चीजों को आप बिल्कुल भूल जाएं और वहां जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है वही आपका मार्गदर्शक है, वही आपका रास्ता है और उस पर आप अपने ड्राइविंग को कितने संतुलन के साथ स्टीयरिंग पर कमांड बना करके उस यात्रा को पूरी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों शायद आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी एक ऐसी तैयारी है या परीक्षा कह लीजिए कि एक ऐसी परीक्षा है जहां यदि आप परीक्षा देने बैठ जाते हैं, एक बार अगर आप उसमें एपियर हो जाते हैं तो ये सवाल इस बात का नहीं होता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। सच पूछे तो सवाल इस बात का ज्यादा हो जाता है कि आप वहां करके कैसा आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिनकी तैयारियां बहुत अच्छी होती हैं अनफॉर्चुनेटली वहां करके खराब आते हैं और जिनकी तैयारियां बहुत अच्छी नहीं होती, सामान्य सी होती है, लेकिन वो वहां करके बहुत अच्छा आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी हमारे सामने मानसिक चुनौती भी पेश करता है सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बार बार मैं अपने इसी डेली ऑडियो में आप लोगों से मानसिक मजबूती, मानसिक मजबूती, मानसिक मजबूती की मांग करता रहता हूं। बात करना तो दूर की बात है, यहां तक कि जो स्टूडेंट्स यहां क्लासेस 15 दिन के लिए आते हैं क्लासेस में, उनसे भी लगातार मैं कहता हूं कि अपनी मानसिक मजबूती के साथ आइए, मानसिक पृष्ठभूमि के साथ आइए, तभी आप यहां से ज्यादा लेकर जा सकेंगे। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट कल परीक्षा में अपीयर होंगे वो शायद इसको बहुत सीधे सीधे तौर पर महसूस भी कर सकेंगे कि जिसमें मानसिक तैयारी की बात कहता था वो वहां उनकी कितनी मदद कर रही है। मित्रों सच पूछे तो हमारे पूरे, चाहे वो हमारी परीक्षा सिविल सर्विस की परीक्षा हो या सामान्यतः कोई भी परीक्षा हो या हमारे जीवन की ही परीक्षा क्यों ना हो, जीवन में भी हम हर क्षण परीक्षा देते रहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई संकट आता है, छोटा सा भी संकट आता है, हमारे रूटीन में थोड़ी सी भी बाधा पड़ती है, आप देखते हैं कि किस तरह से हमारा दिमाग चिड़चिड़ाने लगेगा, दबाव सा महसूस करने लगेगा, अनावश्यक तनाव उसमें भर जाएगा और हम कुछ का कुछ कहने लगेंगे, कुछ का कुछ करने लगेंगे और कुछ का कुछ सोचने लगते हैं। ये हमारे साथ होता है। इनफैक्ट सच पूछे तो मैं इसे ही एक प्रकार की परीक्षा की घड़ी मानता हूं। मतलब ये पूरी की पूरी हमारी जो जिंदगी या कह लीजिए दुनिया जो है ये परीक्षा हॉल की तरह है और इसमें जो छोटी छोटी इस तरह की जो विशेष घटनाएं घटती हैं या जो विशेष अवसर आते हैं वो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स की तरह हैं। और फिर ये प्रकृति देखती है या कह लीजिए ये समाज देखता है कि हमने उस पेपर को कैसे हल किया, यानी कि वो जो समस्या हमारे सामने आई थी उस समस्या से हम कैसे जूझे और किस तरीके से हमने उसका समाधान निकाला। बहुत लोग तो उस समस्याओं के, उन स्थितियों के इतने विक्टिम बन जाते हैं, शिकार हो जाते हैं कि सब कुछ वहीं पर थम जाता है, डाइवर्ट हो जाता है या कह लीजिए कि सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं, जूझते हैं और आपको उनके चेहरे पर उसी तरह से लगातार एक हंसी सी दिखाई देती रहेगी, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो मित्र समझने की बात केवल यह है कि आखिर में ये जो दोनों व्यक्तियों में जो इतना फर्क है, फर्क इस बात का कि एक व्यक्ति इतना चिड़चिड़ा करके अपना सब कुछ खो बैठता है और दूसरा व्यक्ति उससे भी गंभीर समस्याओं से जूझता है लेकिन मुस्कुराता रहता है और खोने की बात तो दूर, वो उससे बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है। ये दोनों ही इंसान हैं, दोनों ही व्यक्ति हैं, तो वो कौन सी चीज है जो दोनों में फर्क पैदा कर रहा है? मित्रों आप लोग को लगेगा कि भाग्य है, पिछले जन्म के कर्म हैं, गुरुओं का आशीर्वाद है या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, धन की ताकत है, इस लोगों का सपोर्ट है, किसी के पास सपोर्ट नहीं है, कोई गरीब है, उसकी पृष्ठभूमि कमजोर है, इस तरह की बातों को लेकर के हम इनका मूल्यांकन करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका कोई रोल हमारे जीवन में नहीं होता है, होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारा यह मान लेना गलत होगा कि जो कुछ भी रोल होता है वो सिर्फ इन्हीं का होता है। नहीं दोस्तों, जो परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं, कितनी भी गड़बड़ हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उन परिस्थितियों का कद कभी भी इंसान के कद से बड़ा नहीं होता। इंसान इस धरती पर सबसे बड़े कद का इंसान है। आप देखिए कि अभी तमिलनाडु में क्या नहीं हुआ है, एक तरह से तांडव ही कह लिए, एक प्रकार का प्रलय ही कह लीजिए कि जल प्रलय सा आया हुआ था। ठीक है, नुकसान हुआ, हम आप नुकसान को रोक नहीं सकते, लेकिन नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, और वो किया गया। आपने देखा, चाहे वो सेना के जवान हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, संस्थाएं हो, किस तरीके से सब ने मिलकर उन सारी की सारी स्थितियों का मुकाबला किया। नो डाउट जन धन दोनों की हानि हुई, लेकिन जितनी हो सकती थी, मैं समझता हूं कि शायद उसका 1% भी वो जल प्रलय अपने आगोश में लोगों को, धन और जन को नहीं ले सका। आफ्टर ऑल जो मनुष्य की शक्ति है उसके सामने उसे झुकना पड़ा। और फिर आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे वो प्रलय धीरे 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 ठंडा पड़ता है, जीवन चलने लगता है। जीवन सच पूछिए तो अपनी सततता में ही हमेशा मौजूद रहता है, और यही उसकी अमरता है। यदि मैं जीवन को सिर्फ अपने ही जीवन से जोड़कर देखता हूं तो डेफिनेटली मेरी मृत्यु के बाद मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जगत का जीवन खत्म नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा। मेरी जगह लेने वाला कोई दूसरा आएगा, दूसरे की जगह लेने वाला कोई तीसरा आएगा, और इस तरीके से जीवन की निरंतरता बनी रहती है। और मुझे लगता है हमको जीवन को इसी विराटता के रूप में देखना चाहिए। यही जीवन की विराटता है, यही उसकी विशालता है। और जब हम जीवन को इस विराटता और विशालता के रूप में देखते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर, वह यह होती है कि हम अपने आप को फिर इस विराट से जोड़ते हैं, इस विराट सत्ता से जोड़ लेते हैं, इस विशालता से जोड़ लेते हैं। फिर हम सारी चीजों को सिर्फ अपने तई ही सीमित नहीं रखते। मैं अपनी सफलता को सिर्फ अपनी सफलता नहीं मानता, मैं अपनी फिर असफलता को भी सिर्फ अपनी असफलता नहीं मानता। मैं अपनी हर चीज को फिर समाज से जोड़ करके देखता हूं, दूसरों से जोड़ करके देखता हूं। और बट नेचुरल है कि जब मैं ऐसा करता हूं तो जब मेरे सामने गंभीर परिस्थितियां आती हैं, दुख के क्षण आते हैं, गंभीर से गंभीर स्थितियां पैदा होती हैं, तो मैं उसको भी दूसरों से जोड़ करके देखने लगता हूं। और यदि मैंने दूसरों के लिए पहले किया है, अगर मैंने अपने सुख को दूसरों के सुख से जोड़कर देखा है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि मैंने उसमें दूसरों को शामिल किया है। तो अब जब मैं अपने दुख को दूसरों के दुख से जोड़ करके देख रहा हूं, तो निश्चित मानिए कि यह प्रकृति का नियम है कि वे फिर दूसरे लोग जो सुख में मेरे साथ थे, दुख में भी मेरे साथ होंगे, और फिर यह मेरा जो दुख है मेरे सामने अपना समर्पण कर देगा और मैं उससे उबर जाऊंगा। दोस्तों, तो यहां जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन सब चीजों के लिए, उसमें दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक, विजन, हमारा दृष्टिकोण क्या है, और दूसरा हमारी अपनी मानसिक मजबूती। क्योंकि इससे पहले कि दूसरे लोग आकर के हमारा साथ दें, हमें उतनी देर तक तो उस तूफान में, उस जल प्रलय में खड़े रहना ही पड़ेगा कि एक नाव आए और हमें बैठा ले। तो वो जो खड़े रहने का जो दौर होगा, जो वक्त होगा, उसके लिए मानसिक मजबूती की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास मानसिक मजबूती होती है और जब जीवन के प्रति हमारा व्यापक नजरिया होता है, तो ये दोनों मिलकर के हमारे जीवन की लॉन्गिविटी को, उसकी खासकर उम्र को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि खासकर अभी जो सिविल सर्विस की परीक्षा में जो स्टूडेंट्स कल बैठने जा रहे हैं, उनको इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली तो मानसिक मजबूती का, पेपर कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, उन्हें भूल जाइए, जो बन रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं बन रहे हैं देखिए कि उनको कितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जो भी करना है बेहतर से बेहतर करना है। और फिर विशालता इस मायने में, विजन इस मायने में कि कोई बात नहीं, अगर नहीं ही हो पाया तो क्या हो जाएगा, जीवन की निरंतरता तो बनी हुई है, जीवन खत्म नहीं होगा। यहां तक कि आईएएस नहीं भी बन पाएंगे तब भी जीवन को कुछ नहीं खतरा होने वाला है। उससे दूसरी हो सकता है कि कोई बड़ी चीज मेरे इंतजार में बैठी हुई हो और मैं उसे हासिल कर लूं। क्योंकि जिंदगी में, खासकर हमारे कर्म के क्षेत्र में, उपलब्धियों के क्षेत्र में, कभी भी पूर्ण विराम जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमेशा अल्प विराम के माध्यम से अपनी जर्नी को पूरा करती है। इसलिए मित्रों, कोई भी स्थिति हो, घबराने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता है, और मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स इस चीज को आत्मसात करके, इस संदेश को आत्मसात करके, पूरी ताकत के साथ, पूरी मानसिक मजबूती के साथ, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ कल की परीक्षा में शामिल होंगे, और वे स्टूडेंट जो कल की परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि जैसे ही परीक्षाएं होती हैं उनके अनसॉल्व पेपर वो लें और उसको देखें, समझने की कोशिश करें किस तरह के क्वेश्चन आए थे। भले ही आप परीक्षा में नहीं बैठे हैं, आप अगर साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो फिर अपना मूल्यांकन करें कि आपकी जो तैयारी थी, अगर आप परीक्षा में बैठते तो कितना कर पाते, कहां आपसे चूकी, और फिर उसके आधार पर अपनी जो अगली तैयारी होगी उसे स्वरूप देने की कोशिश करें। तो मित्रों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कल के आकाशवाणी की है, और मैं समझता हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने की है। सामान्य तौर पर जो न्यूज पढ़ने वाले लोग होंगे वो इसे पढ़ेंगे और ठीक है, नियुक्ति हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि इसका सीधा सीधा संबंध कहीं ना कहीं संविधान से भी है, कहीं ना कहीं प्रशासन से भी है, और आप प्रशासन के ही हिस्से बनने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली यह जो इशू है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। मित्रों, जब आप कभी भी इस तरह की खबरें सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, मैं पहले भी इन सब चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार हमें इन इश्यूज के बारे में बात करते रहने चाहिए ताकि हम उसकी और गहराई तक पहुंच सकें, उसके खासकर डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकें। इसलिए मुझे जरूरी लगता है कि मान लीजिए कि आज की खबर आपने सुनी, कल की खबर आपने सुनी, और आपको खबर सुनने के बाद लगा कि इसमें कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, जैसे लोकायुक्त की एक इंपॉर्टेंट खबर थी मान लीजिए आपको लगता है, तो आप ये मत समझिए कि आपने एक बार न्यूज सुन ली और आपका काम खत्म हो गया। आपको चाहिए कि आप उस न्यूज को दोबारा सुन ले। आफ्टरऑल जब आप अखबार की क्लिपिंग्स पढ़ते हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो आप दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, किताब के साथ भी ऐसे ही करते हैं, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं। तो क्या आप न्यूज के साथ ऐसा नहीं कर सकते? कोई ऐसा तो है नहीं कि न्यूज एक ही बार सुनने का आदेश या दोबारा तिबारा सुनने की मनाही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर है और जब आप उसे दोबारा सुनते हैं, तिबारा सुनते हैं, तो आप उनकी बारीकियों को फिर पकड़ पाते हैं। जैसे बारीकियों को पकड़ पाने के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आप इस न्यूज को सुनेंगे तो इस न्यूज को सुनने में आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो जानने को मिलेगी वो ये है कि जो कोर्ट ने अपनी जो टिप्पणी दी है, यही हुआ है कि उत्तर प्रदेश अपने यहां लोकायुक्त की नियुक्ति करने में असफल रहा है, वो अपने संवैधानिक दायित्व को नहीं निभा पाए हैं, इसलिए एक तरीके से कह दें आपकी मजबूर होकर ये कदम सुप्रीम कोर्ट को उठाना पड़ रहा है। और आप सोच करके देखिए कि जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए था या वहां की एक कमेटी को करना चाहिए था उसे सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है, राइट। उसी में आपको टिप्पणी मिलेगी कि अब ये कौन कौन थे जिनको अपने दायित्व निभाने चाहिए थे। अब इसमें आपको आश्चर्य होगा, एक तो चीफ मिनिस्टर, जो लोकायुक्त को नियुक्त करने वाली जो कमेटी होगी उसमें एक तो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, दूसरे प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, और तीसरे हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। इन तीनों से मिलकर के वो कमेटी बनती है, और फिर वो तीन जो कमेटी होती है, वो पैनल्स जो नाम होते हैं उनमें से किसी एक की नियुक्ति करती है। तो अब आप देखिए कि अगर ये तीनों ही इसको निभाने में असफल रहे हैं, मतलब मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं कि अब आप इसकी गंभीरता को देखते चले जाइए, तो क्यों असफल रहे हैं? सीएम नहीं निभा रहे हैं, चलिए हम मान करके चल सकते हैं कि सीएम नहीं निभाएंगे, एक सामान्य रूप से हम एक हाइपोथेसिस ले सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत से राज्यों में हैं जहां लोकायुक्त के मामले को लेकर के खींचतान चली। अब देखेंगे कि आप गुजरात में ले लीजिए कि लंबे समय तक 7-8 साल तक वहां लोकायुक्त का पद खाली रहा, और यहां तक कि जो दूसरे राज्यों में भी, अगर दो राज्यों का नाम आप अलग से कोट कर सकते हैं, वह कर्नाटक और उत्तराखंड, यहां के जो लोकायुक्त हैं ये रियल मायने में जो लोकायुक्त हैं वो पावरफुल हैं, उनके पास शक्तियां हैं और वो स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन बाकी राज्यों में भी जो लोकायुक्त हैं उनके पास कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, उनको अपने बहुत से काम कराने, मतलब स्टेप उठाने के लिए राज्यों से ही सहमति लेनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में वहां लोकायुक्त का होना न होना भी एक ही जैसा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि दिल्ली में जो नियुक्ति हुई, जो विधेयक पारित हुआ है, नियुक्ति जो विधेयक पारित हुआ है, उस विधेयक के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो नियुक्त करने वाली जो कमेटी है उसमें बहुमत जो है वो सरकार का है, पॉलिटिशियंस का है, तो डेफिनेटली ऐसे में जो लोकायुक्त जो नियुक्त होगा वो कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा। और आपको मालूम है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो सिस्टम जो बनाया जाना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर टर्न डाउन किया कि नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायालय में नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जो सत्ता होगी, चूंकि उसको इस बात का डर है कि उसके खिलाफ भी जांच हो सकती है, उसके मंत्रियों के खिलाफ जांच हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसको टालता रहेगा, हम ये मान करके चलिए चलते हैं। ज्यादातर मामलों में यह होता भी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात ले लें तो उत्तर प्रदेश में जो पिछले लोकायुक्त थे उनकी जांच के चलते कई राजनीतिकों को जेल में जाना पड़ा, और जिसमें बसपा सरकार के, बहुजन समाज पार्टी सरकार के मंत्री रह चुके थे। तो ये एक भय तो है जो सत्ता में है, चलिए उनको भय है, लेकिन जो सेकंड मेंबर है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो एक तरीके से वॉच डॉग की तरह काम करते हैं और लोकतंत्र में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और सच पूछे तो लोकतंत्र तब तक सर्वाइव ही नहीं कर सकता जब तक कि विपक्ष ना हो, और जितना मजबूत विपक्ष होगा लोकतंत्र उतना अधिक ग्रो करेगा। विपक्ष के नेता भी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रहे, अदरवाइज वो विधानसभा में उठा सकते थे या विपक्ष मांग कर सकता था, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। और तीसरे फिर हाई कोर्ट के जो जज हुए, चीफ जस्टिस हुए, वो भी इस कमेटी में होते हैं, वो भी इसे नहीं कर पाए। अब रियल स्थिति हमें नहीं मालूम है कि उन्होंने सरकार को लिखा नहीं लिखा, हो सकता है कि उन्होंने लिखा हो कोई जवाब न मिला हो या टालमटोल वाली जवाब मिली हो, तो उन चूंकि स्थितियां मालूम नहीं है तो कुछ टिप्पणी करना गलत होगा। लेकिन जहां तक ऐसी नियुक्तियों का सवाल है जहां राजनेताओं को ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो सकता है या उन पर किसी तरह का नियंत्रण हो सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर वो उनकी नियुक्तियों को टालेंगे, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मामले में हुआ। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा जो मैसेज गया है सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेप से, वो ये है कि उसे वो हमेशा के लिए नहीं टाल सकते। और निश्चित रूप से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अगर लोकायुक्त की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में की है तो ये राज्य सरकार के ऊपर एक तरीके का कह लीजिए कि बहुत ही जबरदस्त टिप्पणी है कि राज्य सरकार किस तरीके से अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है। एक मैं समझता हूं कि एक कठोर कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया है। तो इससे यह भी मैसेज गया है कि जो भी राज्य अगर इस तरीके से करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए खुद सामने आकर के उस पर अब उस चीज को अपने हाथ में लेगी। फिर यहां पर आप एक न्यायिक सक्रियता का आपको एक उदाहरण देखने को मिल गया। तो मित्रों, इस न्यूज के माध्यम से मैं जो बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं वो ये कि लोकायुक्त का जो पद है, लोकायुक्त की जो संस्था है, इसके बारे में आपको तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और एनालिटिकल आधार पर तैयारी करनी चाहिए। यह नहीं कि क्या योग्यताएं हैं, कौन नियुक्ति करता है, एनालिसिस उसकी बकायदे होनी चाहिए कि अभी तक क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, राज्य सरकार क्यों इससे खुश नहीं है, किस तरीके के इस पद को लेकर के विवाद उठे हैं, क्या हो रहा है और इनफैक्ट क्या होना चाहिए। तो इस तरह से सारी एनालिसिस आपके दिमाग में बहुत साफ तौर पर होनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा इशू है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट से। फ्रेंड्स, जो दूसरी जो खबर थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, खासकर डीजल व्हीकल्स को लेकर खबर थी, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ही ये हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि दिल्ली और जो नेशनल कैपिटल जो रीजन है, जिसको हम एनसीआर एरिया कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, उस क्षेत्र में अब मार्च तक जो 2000 सीसी की जो गाड़ियां हैं, जो डीजल की गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और जो महंगी गाड़ियां हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है। दोस्तों, जब इसके बारे में जनहित याचिका जब दायर सी कुछ हुई थी, मुझे ध्यान आ रहा है कि पेपर्स में ये पढ़ने में आ रहा था कि जो ये कार बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो, या आप कह लीजिए कि कैपिटलिस्ट अप्रोच, कि उनके पास पैसे की कमी नहीं, ताकत की कमी, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है, तो वो दबाव डालेंगी जुडिशियर पर और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेशों को टर्न डाउन कर दे और ये कहे कि नहीं नहीं उस डीजल गाड़ियां चलती रहेंगी। लेकिन यहां फिर से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक ताकत, जिसको हम एक जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियरी, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी है, उसका एक प्रमाण है। कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके किया कि मार्च तक इस तरह की कोई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और मित्रों, आप देखेंगे कि आज मैं काफी नॉलेज सेंटर में आपको इसको लेकर के, इस इशू को लेकर के रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल कमेंट है, दैनिक भास्कर का भी एडिटोरियल कमेंट है और साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइम्स का भी एडिटोरियल कमेंट है। ये तीनों अखबारों के एडिटोरियल कमेंट्स इस सब्जेक्ट पर लिखा जाना ये प्रूफ कर रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यू है, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण होता है। दोस्तों, जहरीली गैस जो हवा हमारी जो जहरीली हो रही है, या कह लीजिए कि हवा को भी अब सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी, हम इस स्थिति तक आ गए हैं। और आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दुनिया के जो 20 सबसे अधिक पॉल्यूटेड सिटीज जो आइडेंटिफाई किए हैं, आउट ऑफ दोज 13 आर इन इंडिया, उसमें से 13 भारत के हैं। तो दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो ये कि ये केवल दिल्ली के लिए ही क्यों हो, ये पूरे देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि दूसरे शहरों के भी हवाएं कम जहरीली नहीं है, लेकिन चूंकि वो राजधानी है तो राजधानी की बात काफी उठी। और उस सच पूछे तो ये हवा आज की ही जहरीली नहीं है मित्रों, सच पूछे तो 1999 में मैंने जो दिल्ली छोड़ने का फैसला किया था वो सिर्फ इसलिए कि उस समय पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था और हेल्थ की मेरी प्रॉब्लम होने लगी थी, और डॉक्टर ने, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर यतीश अग्रवाल, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि भाई साहब अगर आप छोड़ सकते हो तो दिल्ली छोड़ दीजिए। उस समय से ये मामला चल रहा है, ये तो कोर्ट लगातार इस पर टिप्पणियां अभी करती रही है, तो ये मामला इतना ज्यादा हॉट हुआ, गर्म हुआ और फिर इस तरह के फैसले आने लगे। और सच पूछे तो पानी भी शायद नाक के ऊपर से गुजरने जैसी स्थिति आ गई थी। तो मित्रों, दैनिक भास्कर ने बहुत सही ये प्रश्न किया है कि ये केवल दिल्ली के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए होना चाहिए। और उसमें उन्होंने एक बात और भी बताई है कि देखिए, डीजल वाहन ज्यादा क्यों आने लगे, डीजल के कार्स क्यों आने लगी, पहले ऐसी स्थिति नहीं होती थी। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले गए, डीजल पर सरकार सब्सिडी ज्यादा देती रही, उतने नहीं बढ़ाती थी, क्योंकि डीजल का जो प्रयोग है वो ट्रकों में और ट्रेन्स में ज्यादा होता है, जो सामान की ढुलाई करते हैं। और सरकार का यह मानना है, और जो सही भी है, कि यदि ढुलाई महंगी हो जाएगी तो वस्तुओं की कीमतें महंगी हो जाएंगी, तो उसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, गरीब लोगों पर पड़ेगा। तो डीजल को जानबूझ करके सस्ता रखा गया, उस पर सब्सिडी ज्यादा दी जाने लगी। और मजेदार बात है कि डीजल को सस्ता रखा गया, उसका फायदा अब वहां कम और कार वाले ज्यादा उठाने लगे। अब डीजल की कार लो और खूब डीजल की कारें बिकने लगी, क्योंकि उसमें अब फ्यूल चार्जेस उनके सस्ते होने लगे। तो मतलब जिसका उपयोग एक आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए किया जाना था, उसका उपयोग अब बड़े बड़े पैसे वाले लोग महंगी कारें डीजल की खरीद करके वो अपने फायदे के लिए करने लगे, और वो सारा का सारा रखा रह गया। भास्कर ने ये प्रश्न उठाया भी है कि मोबाइल टावर और खासकर जो बड़े अच्छे अच्छी जो हमारी कॉलोनीज हैं जहां पे बिजली चली जाती है, तो वो अपने यहां जनरेटर चलाने के लिए भी डीजल का उपयोग करते हैं। तो उद्देश्य क्या था और उपयोग क्या होने लगा, तो उसमें भी कोई हमारा पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो भास्कर ने जो अपनी बात रखी है कि इसको सही तरीके से सोचा जाना चाहिए और एक लॉजिक तरीके से इसके बारे में कदम उठाया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये भी नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेगा, और जो अभी मैंने लोकायुक्त की बात कही थी, जनसत्ता ने उस पर एडिटोरियल लिखा है, तो वो भी आपको क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेगी। दोस्तों, न्यूज में बस इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट थी। पेरिस सम्मेलन के बारे में रहा, हमारे मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट था जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो सम्मेलन था, उसमें उन्होंने अभी यही कहा है कि भारत के मतलब विकासशील देशों के पक्ष में रहा है। 196 कंट्रीज जो थे उन्होंने सहमति से जो पारित किया है, और उन्होंने ये बताया है कि एक तरह की सहमति बनी है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो विकासशील देशों को वो उसका हर्जाना देंगे, ताकि विकासशील देश अपने यहां ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें कि वो कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। तो वो चूंकि विकासशील देशों के पास वो हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, और उनके सामने अभी इंडस्ट्री ग्रो करने के भी बहुत सी गुंजाइश है और उनकी जरूरत भी है, तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो वो उसका इस्तेमाल करके कार्बन उत्सर्जन को अपने यहां कम कर सकेंगे, और साथ ही साथ वो अपने यहां फिर ग्रीन एनर्जी को ज्यादा विकसित कर सकेंगे। मित्रों, न्यूज़ के बारे में इतना ही। आज मैं आपको नॉलेज सेंटर पर एक बहुत अच्छी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो राष्ट्रीय सहारा की है, वो है दोहा से आगे बढ़े नैरोबी में। अभी नैरोबी में खासकर वार्ता चल रही है दोहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, आगे उसको बढ़ाने के लिए, वार्ता को बढ़ाने के लिए, जिसमें खासकर जो अनाज है उनमें सब्सिडी देने के मामले को लेकर बात चल रही है। दोहा सम्मेलन को हुए आज 14-15 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई है। और इसके केंद्र में कुल मिलाकर बात यह है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील देशों पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने यहाँ अनाज में सब्सिडी देना कम करें, मतलब किसानों को सब्सिडी कम दें, जैसे न्यूनतम प्राइस है तो उसको खत्म कर दें। सरकार किसानों से रिलेटेड चीजों पर, जैसे हम रासायनिक खादों में सब्सिडी सरकार देती है और दूसरी चीजों में, ताकि अनाज महंगा ना हो, तो दबाव है कि वो सब्सिडी को कम करे। और उनका उद्देश्य केवल ये है कि अगर ये सब्सिडी कम कर देंगे तो भारतीय उत्पादन जो अनाज का है वो महंगा हो जाएगा, तो फिर भारत के बाजार में वो अपना सस्ता अनाज भेज सकेंगे, ये उनके दिमाग में है। भारत इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है और भारत के साथ दूसरे जो विकासशील देश हैं वो भी जुड़े हुए, मतलब आप कह लीजिए कि खासकर जो दोहा वार्ता जिसको हम कहते हैं, इस मामले में भारत पूरे के पूरे जो विकासशील देश हैं उनका नेतृत्व कर रहा है। और भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो इस किसी भी दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये भारत की अपनी जरूरत है। हम कृषि प्रधान देश हैं, हमारी पॉपुलेशन की 1/3 ऑलमोस्ट गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, फिर हमने अपने यहाँ खासकर फूड राइट अनाज को एक तरीके से सबको उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम पारित किया हुआ है, हमें वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उन्हें सस्ते में अनाज उपलब्ध कराना है, हमें अनाज का भंडारण करना है। ऐसी स्थिति में हम भारत एक तरीके से कह लीजिए कि फूड सब्सिडी को बंद नहीं कर सकता, उसको रैशनलाइज कर सकता है, कुछ सीमा तक उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल जिस तरह की मांग विकसित देशों की है उसे कर पाना भारत के लिए संभव नहीं है। तो मित्रों, इसको लेकर के एक बहुत अच्छा ये आर्टिकल है और ये अंडरलाइन भी किया हुआ है और इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, बल्कि मैं चाहूंगा कि इसकी क्लिपिंग्स आप अपने पास भी रख लें। वेल रिटेन है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है और सिविल सर्विस के एंगल से भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये नॉलेज सेंटर में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, और इसी के साथ ही अन्य भी 5-6 आर्टिकल्स हैं जो नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आप देख लेंगे, उनकी चर्चा मैं यहां नहीं करने जा रहा हूं। दोस्तों, तो अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, ईमेल का। बहुत से मेल आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और आज के मेल में भी ज्यादातर मेल इसी तथ्य को लेकर के हैं कि जो मंडे का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसे कंटिन्यू रखा जाए। तो मित्रों, मैं कुछ दोस्तों के नाम ले रहा हूं। अशोक कुशवाहा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, सौम्या तिवारी मुगलसराय उत्तर प्रदेश से, धीरज सिंह अजमेर से, नित्य सिंह वाराणसी से, पुष्पेंद्र ठाकुर दिल्ली से, संगीता कुमारी वाराणसी से, विपिन कुमार सिंह आप भी वाराणसी से, शिव कुमार, विकेश विशेन बालाघाट मध्य प्रदेश से, मधु गौतम यमुनानगर हरियाणा से, संदीप ठाकुर, विकास चौहान, प्रदीप बघेल, आनंद मोई नई दिल्ली से, आकाश पांडे सिलीगुड़ी से, प्रवेश, मयंक वर्मा, प्रद्युम्न मिश्र मऊ उत्तर प्रदेश से, त्रिभुवन जोशी, रजनी शुक्ला इलाहाबाद से, नरेंद्र प्रसाद निराला दरभंगा बिहार से, पूर्णेश्वर साहू बालो छत्तीसगढ़ से, कुमार गौरव मुजफ्फरपुर बिहार से, और मनोहर दत्त मिश्र पटना बिहार से। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु गौतम यमुनानगर से जिन्होंने मेल लिखा है, उनका मेल आज बेस्ट मेल के रूप में घोषित किया जाता है, तो मधु गौतम को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस ऑडियो को अब यहीं समाप्त करता हूं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।